राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री रामशुदास जी महाराज द्वारा 17 अक्टूबर 1992 को प्रातः लगभग 9 बजे वाराणसी में हुआ।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण।
शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार हर एक भाई बहन को तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। तत्व ज्ञान जिसको बोध कहते हैं, तत्व साक्षात्कार कहते हैं, अथवा भगवान के दर्शन करने चाहिए, साक्षात भगवान के। इसके लिए ही मानव शरीर मिला है। मनुष्य शरीर की सफलता परमात्म तत्व की प्राप्ति करने में है। जब तक वो प्राप्ति नहीं की जाए तब तक मनुष्य सफल, मनुष्य जन्म सफल नहीं है। भगवद गीता में 3 बात आई है। एक तो कृतकृत्य हो जाना और एक ज्ञात ज्ञातव्य हो जाना और एक प्राप्त प्राप्तव्य हो जाना। कृतकृत्य होने पर करना बाकी नहीं रहता और ज्ञात ज्ञातव्य होने के बाद जानना बाकी नहीं रहता और प्राप्त प्राप्त भी होने पर प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। ये 3 शक्ति है हमारी, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है और पाने के लिए मानने की शक्ति है। ये 3 ताकत है मनुष्य मात्र में। इन 3 के लिए कहा गया कि योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणांश योग निश्चया। कल्याण के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म योग के करने से कृतकृत्य हो जाता है, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। 3 शक्तियों के ये 3 योग बताए हैं। इनमें कई मतभेद होने पर भगवद गीता के विषय में जैसा मैंने समझा है वो कहता हूं। एक बात होने पर 3 हो जाए, कृतकृत्य हो जाता है पूर्णतया, तो ज्ञात हो ज्ञातव्य और प्राप्त भी बाकी नहीं रहता। प्राप्त करना और करना बाकी नहीं रहता। एक प्यास समय कोई और बिंदु से फलम, वहां ज्ञान योग और सांख्य योग योग के विषय में कहा है, किसी एक में ठीक तरह स्थित हो जाए तो दोनों के फल को प्राप्त हो जाएगा। तो ये विलक्षण शक्तियां है, ये मनुष्य को प्राप्त है। अब ऋषि राम वे चित्र कुटल नैना पसंद राम रुचि की विलक्षणता है, योग्यता की विलक्षणता है, विश्वास की विलक्षणता है। तो जहां विश्वास बैठे और जिसमें आपकी श्रद्धा भक्ति ये हो और उसके पाने की योग्यता हो तो किसी बारे में चलो पूर्णता हो जाएगी। ज्ञान योग पर विश्वास है तो ज्ञान योग करो, भक्ति योग पर विश्वास, भगवान पर विश्वास हो तो वो जो कर्म योग पर हो तो कर्म योग से लो। आपकी श्रद्धा विश्वास ये पूरा चाहिए। चलते समय में साधन करते समय एक की मुख्यता होगी, साथ में दोनों भी रहेंगे पर दोनों रहने पर भी मुख्यता एक बात की होगी। एक बात और याद आ गई, अभी इस जमाने में भक्ति योग की सुलभता बताई गई, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा से बताया, ज्ञान मार्ग कठिन है, भक्ति मार्ग सुलभ है और कर्मयोग है वो तो खास ग्रस्तों के लिए है ही। एक बात और ध्यान देने की, कर्म और कर्मयोग दो है, भक्ति और भक्ति योग दो है और ज्ञान योग ये दो है। योग साथ में लग जाता है तो वो समता आ जाती है, कर्म करने पर शुभ शुभ कर्मों फंसता है, ऐसे भक्ति ज्ञान में भी केवल सीख लेने से जल्दी प्राप्ति नहीं होती, योग होने से। योग ना समता, भाई बहन ध्यान दे करके देखें कि हृदय में जो राग और द्वेष है, अच्छे और मंदे का जो अपने पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है अच्छे का मंदे का, वो प्रभाव जब न पड़े तब अपनी स्थिति असली है। जब तक अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसमें हम बह जाते हैं, तब तक कर्मयोग की सिद्धि भी नहीं है, ज्ञान योग की भी सिद्धि नहीं है, भक्ति योग की सिद्धि नहीं है, किसी योग की भी एक सिद्धि हो जाएगी तो समता आ जाएगी। गीता में खास समता का वर्णन है, समत्व आना चाहिए, समत्व योग उच्चते से, हर शोक न हो, राग द्वेष न हो, ये न हो, साम्य अवस्था, न ऐसे ऊंचा नीचे हो न ऐसे। गीता ने साहब कहा यही तेज तस्तर को ये सांग साम्य से तंग माना। जिन भाई बहनों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है तो यही देता, यहाँ ही संसार में रहते भी संसार पर विजय होगी, विजय करूँ और संसार का असर प्रदान अनुकूलता प्रतिकूलता का, तब तक वो हार गया संसार जीत गया। और संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता का असर न पड़े तो संसार को जीत गया, संसार से ऊंचा उठ गया। अच्छा मंदा ठीक और बेठीक अनुकूल और प्रतिकूल ये द्वंद्व है, द्वंद्व द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त मूढ़ा पद्मभ्यंत निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तु निर्योग क्षेम आत्मा इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये द्वंद्व है, हर्ष शोक राग द्वेष अनुभूति प्रतिभूति ठीक बेठी, ये है संसार। और समता में आ गया यही तो संसार को जीत गए, मन में ना खुशी आती है न दुखी होते है। तो पदार्थों का असर पड़ने से अनुकूलता पर राजी हो जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुखी हो जाते हैं। इसमें सावधान रहो, कर्मयोग से सावधानी होती है। कर्मयोग का अर्थ बड़े सरल सीधी भाषा में कहा जाए तो सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, जो कुछ हमारे पास है उनके द्वारा दूसरों को सुख कैसे पहुंचे। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर देना और दूसरों को सुख पहुंचाना, इससे कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। गृहस्थ में ऐसा असर बड़ा सुंदर अवसर मिलता है। माता पिता, भाई भौजाई, भतीजे, भस्ती पुत्र, ये सब है घर के खास गृहस्थ। इनके साथ काम करते हुए राग द्वेष में वो वर्ष हो तो सुख दुख के समय कृत्वा का है। हर शोक होते हैं, राग द्वेष होते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ता है। परंतु आते ही कहते भाई ये हमारा काम नहीं है। अगर राग द्वेष के वशीभूत काम करते हैं तो हमारे में और पशुओं में क्या फर्क आया, समझदारी क्या काम आई। तो हर एक शोक वैसी बदले ठीक बैठी में फंसे नहीं, ये दलदल है, इसमें फंस जाने से मुक्त नहीं होता। ये परिस्थिति नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। संसार में सबकी परिस्थिति आई है, भगवान के अवतार हुए राम कृष्ण आदि, उनके भी अनुकूलता प्रतिकूलता आई है, संतों के भी अनुकूलता प्रतिकूलता, सत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों के, भगवत प्रेमियों के भी अनुकूलता प्रतिकूलता आई, ये तो आएगी। संसार है, संसार है ही ऐसा, इसका स्वरूप ही है। उसमें हमारे पर असर रखना पड़े तो कर्मयोग में तो सेवा करना है, वो सबके सब सुखी कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, ये एक भाव रहना चाहिए। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, दूसरों के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। पर हित बस जिनके मन में है तिनका जग दुर्लभ खुश रहे, ते प्राप्तवंती माम एवं सर्वभूत हिते रता। गीता कहती है कि वे मेरे को प्राप्त होते हैं वो प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है। हित कर सके ये ताकत नहीं है, सबको प्रसन्न कर सके, सबको राजी कर सके, सबको सुखी कर सके, ऐसी ताकत नहीं है। इसमें तो देखा जाए तो संसार मात्र मिलकर के भी एक मनुष्य को राजी कर दे हाथ की बात नहीं है। अपने पास जो कुछ है दूसरों के हित के लिए, दूसरों की प्रशंसा के लिए अपनी शक्ति से सेवा करे, पदार्थों से सेवा करे, सुख पहुंचाने का भाव अपना हो। भाव अपना सर्वभूत हित रहता है प्राणी मात्र हित करने का, तो परमात्मा को भी प्राप्ति हो जाएगी। क्यों परमात्मा ही सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। भगवान प्राणी मात्र के परम सूर्य है, आप सूर्य बन जाओ भगवान के साथ में, मम साधन्य मां कथा, भगवान की सरलता को प्राप्त हो जाओगे। हृदय में हित का भाव हो, जैसे माता अपने बच्चे के पालन में हित में रस रहती है, ऐसे प्राणी मात्र के हित में रहे। वो सूर्यम सर्वभूतानां प्राणी मात्र के सूर्य हो जाए, सूर्य मानो उपकार की इच्छा करके उपकार करने वाले मित्र होते हैं और उनसे उपकार की इच्छा न रखते हुए केवल अपनी तरफ से उपकार ही उपकार करना है, ये है सुहृद। सुहृद मित्र आदि सुहृद और मित्र में भेद है। तो केवल हित करने का भाव, अपने सेवा करने का भाव, अपने सुख नहीं रहना, अपने सेवा नहीं रहनी है, अपने दूसरे से पूजवाना नहीं है, आराम नहीं रहना है, हमें तो सबकी सेवा करना। अमानी राम मान लेना की रतनीय सदा हुई, अमानी मान दो मान्य लोक स्वामी लोक जग, भगवान के भी नामों में अमानी मान दो और भक्तों के लक्षणों में सभी मान प्रद आप अमानी, ऐसा कहा। अपने मान न रखो, सबका मान दे, सबका आदर करे, सबका हित करे, अपने सुख की इच्छा न करे। निर्वाह अपना करना है, यहाँ सुख भोग के लिए नहीं आए। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति करें तो स्वर्ग स्वर्ग क्षीरे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वो भी थोड़ा है, अंत में दूध देने वाला है। इस वास्ते सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, अपने सुख का भोग नहीं करना है। ऐसे संसार में रहे, ये संसार पाठशाला है, पाठशाला पढ़ाई। जैसे बच्चों के लिए पाठशाला होती है तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, ऐसे गृहस्थ आश्रम है। ये संपूर्ण दुनिया में मनुष्य देवता असुर राक्षस आदि सब में मनुष्य है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। वो विद्या अध्ययन है, ये ब्रह्म विद्या अध्ययन का है आश्रम। ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है, तत्व की प्राप्ति करना है। यह लब्ध हुआ चा परम लाभम, अपनी कसौटी के लिए ये छठे अध्याय का 22वां श्लोक बड़ा ही काम का है। यह लब्ध हुआ चा परम लाभम मन्य से राधिक, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इस लाभ के समान और कोई लाभ है ही नहीं, ये बात। दूसरी यशमन स्थित हो दुख है न गुरु ना भी विचार, बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। सुख की तो इच्छा नहीं रहती और दुख वहां पहुंचता नहीं, ये खास स्थिति है। साधक के लिए अपनी अंतिम कसौटी है ये छठे अध्याय का 22वां श्लोक। लाभ की तो कोई कमी नहीं, लाभ पूरा हो गया, आगे से लाभ हो ही नहीं सकता इतना लाभ, और दुख वहां पहुंचता ही नहीं। अगर 23वें श्लोक में कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुखों के संयोग से वियोग, संस्पर्श ही नहीं है दुखों का। ऐसे परम आनंद की प्राप्ति करना मनुष्य का असली ध्येय है। क्यों मनुष्य कोई भी है सुख चाहता है, और मनुष्य नहीं जीव मात्र सुख चाहता है, तो सुख असली इसकी मांग है। वो सुख इतना मिल जाए कि उससे बढ़कर वो सुख होना संभव ही नहीं, इतना सुख मिलना चाहिए। अगर दुख से डरता है तो दुख से पहुंचे नहीं, दुख का स्पर्श ही न हो, अब मनुष्य जन्म सफल हो गया। तो वो सुख दूसरों को सुख पहुंचाने से मिलता है। जैसे खेती करी जाए, बढ़िया बढ़िया दाने रेती में मिलाए जाते हैं, मिट्टी में मिलाए जाते हैं तो खेती हो जाती है, ऐसे अपने सुख को दूसरों के सुख के लिए मिट्टी में मिलाया जाए, सबको कैसे आराम मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके सब सुखी हो जाए, सबसे निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल अर्धम आचार्य, किसी को कभी दुख न हो, ये भीतर का भाव, और इसी भाव से सबकी सेवा करें, सबको सुख कैसे पहुंचे। गृहस्थ में रहने की विद्या क्या है कि दूसरे सुखी कैसे हो, ये एक विद्या है, ये जो मैंने कही ना बात। माता पिता खुश रहे कैसे रहे, भाई भौजाई भतीजे खुश कैसे रहे, स्त्री पुत्र कैसे खुश रहे, इसीलिए सास ससुर देवर जेठ पति ससुरादि सुखी कैसे रहे। बहनों माताओं के लिए भी हमारे लड़का लड़की पोता पोती सब सुखी कैसे रहे। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है, आपके हृदय में जब सबके हित की भावना होगी तो सभी आपकी सेवा करेंगे, और कोई सेवा नहीं करेगा तो भी आपके मन में दुख नहीं होगा। क्यों? आप सुख भोग की इच्छा रखते ही नहीं, आप तो केवल सेवा की इच्छा रखते हैं, और सेवा जो उसे ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी आदमी बात है। आजकल का जमाना बहुत बढ़िया है, लोग कहते हैं कि बना कर गया है, आज स्वार्थ ही स्वार्थ हो गया है, तो सेवा करने वालों के लिए बड़ा ही सुंदर अवसर है। आज साधु भी सेवा करे, ब्राह्मण भी सेवा करे तो दूसरे सेवा ले लेंगे, पहला सेवा लेते नहीं थे। व्यापार चलता नहीं, दुकान चलती नहीं है, सबको सुख पहुंचाने की बात लेते नहीं, क्या करें हम। आज ऐसी कृपा है, सास अपने सेवा करो, बहू की बेटियों की करो, काम धंधा करो, वे आराम से बैठी रहे और ये काम करे। बाहर से कोई आ जाए और देख रहे तो बोलेगी कि वो कहते हैं माँ जी आप बैठो हम काम करें, पर इसे रहा नहीं जाता, क्या करें, ये रहती नहीं, ये सही रह नहीं जाता, काम करने के लिए आदत हो गई। उल्टी बात ये कहें, ये शर्म नहीं आती कि हम कैसे बैठे हैं, ये बूढ़े हैं वृद्ध हैं पूजनीय है आदरणीय है हमारे, ये विचार ही नहीं होता। रामायण में तो आया है कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन से करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी निश्चर समझाने वे निश्चर है राक्षस है। तो सेवा करना है, सेवा लेने का काम नहीं है, सेवा करना है। दूसरे जितने जीव जंतु है उनकी रक्षा करना है, लोगों में भाव हो गया है कि ये सबने जीव जंतु मनुष्य के लिए बनाए ना, मनुष्य इनकी सेवा के लिए बनाए। जेल खाने में जो अफसर रहता है वो जेलियों के लिए रहता है, अफसर के लिए जेल नहीं रहते, उनका प्रबंध करने के लिए रहता है। ऐसे दूसरे 84 लाख जोड़ी में पड़े हुए जितने जीव हैं, उनकी रक्षा करने के लिए मानव शरीर है, भक्षण करने के लिए नहीं, दुख देने के लिए नहीं, एक सिद्धांत है। इस तरह से भाई बहनों को अपना जीवन बता बिताना है, कैसे सुख पहुंचे, कैसे आराम पहुंचे, कैसे इनका सम्मान हो, कैसे कैसे कोई दुख दे तो उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई, अपने तरफ से भलाई भला करते हैं उनका तो भलाई होता है, फिर सब भला हो जाएगा। कि दूसरे नहीं करेंगे, दूसरों की भलाई सिखाने का मार्ग अपने भलाई करना है। आप करके करोगे उससे उपदेश होगा, वो कहने से नहीं होगा। गीता माया है यदि करो जाना, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं दूसरे लोग वैसे ही आचरण करते हैं, और सहयत प्रमाण अंकुर से वो जिसको प्रमाणित कर देता है लोग स्थगन करते हैं। तो आचरण करता है एक तो एक कहता है, दो बात हुई, आचरण का असर कितना पड़ता है कि यत यत आचरती तत् तत् एक 500 है 500, और सयत प्रमाण कुरते लोग या तत् यत दो ही शब्द है। मानो कहने का असर पड़ता है 2 गुना, वह करने का असर पड़ता है 5 गुना। आप जिस वर्ण में जिस आश्रम में जिस परिस्थिति में जहाँ है वहां रहते हुए उसके अनुकूल शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, तो उसका असर पड़ेगा महाराज। पांचवा, और व्याख्यान दो कोरा कहो तो उससे जोर से असर नहीं पड़ता। बंदूक होती है वो जोर से छोड़ जाए तो बड़ा धमाका होता है, जोर से आवाज आती है, परंतु भीतर गोली न होने से चोट नहीं करती, और भीतर गोली उसे चोट करती है। तो आचरण है वो भीतर में गोली भरी हुई थी, उनके शब्दों में भी शक्ति होती है। भीतर में गोली नहीं करता तो नहीं आचरण नहीं है। एक बेसिया पति व्रत का उपदेश दे रही है, हंसेंगे लोग, असर क्या पड़ेगा। तो अपने आसन शुद्ध बनाना एक नंबर का बात ही है। दुनिया में भला करते हैं, दुनिया का हित करते हैं, दुनिया की सेवा करते हैं। सज्जनों, दुनिया की सेवा तभी होगी जब आप अपनी सेवा कर अपने भले बन जाओ, सबको सुख पहुंचाओ, सबको हित करो। आप अच्छे बन ही जाओगे निस्संदेह बात, और बातें करने मात्र से नहीं होता काम। दोनों तरफ आज करो और कहो भी, प्रेरणा भी करो, परंतु अपने सबके हित करने का काम छोड़ो मत। बड़ी तत्परता से उत्साह आना चाहिए, सेवा मिल जाए, दूसरों को सुख हो जाए। क्या करूं मेरे द्वारा, मेरे तन मन धन से किसी से लोगों को सुख कैसे हो, मेरी पूंजी से सबको आराम कैसे हो। आज दुनिया में दुख बहुत है, परिवार में बड़ा दुख है, बड़ा संताप है, बड़ी जलन है, तो सबको सुख कैसे पहुंचे, ये भाव रखो। दुखदायी परिस्थिति में आने पर भी अपनी तरफ से सबको सुख पहुंचाने का उद्योग अपनी तरफ से पूरा। तो उनसे भला होगा, दुनिया में भलाई तभी फैलती है जब स्वयं आप भला होता है। खुशबूदार पुष्प होता है, उसकी सुगंध फैलती है, तो जिसमें ये सुगंध भीतर से है, सबकी हित करने की इच्छा है, उनके प्रभाव से दूसरे भी हितकारी बनते हैं, ये असर पड़ता। इस वास्ते सज्जनों, सबसे पहले ये करो, घर में रह रही बहनों माताओं से कहना है कि सबका हित हो ऐसे करो, सबको सुख हो ऐसे करो, आराम हो ऐसे करो। एक कहानी याद आ गई, एक लड़की ब्याही गई थी, उसके माता पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारा धर्म वो होगा जो तुम्हारे ससुराल में होगा, परंतु सबकी सेवा करना, सुख पहुंचाना, छोटे बड़े कोई हो सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, और अपने धर्म का जो आचरण है ठीक तरह से, अपने ससुराल में जो धर्म वो धर्म पालन करना। पति का धर्म, पति पतिव्रता वो होती है जो पति के धर्म का पालन करती है, उस कुटुंब का धर्म पालन करती है, घर में जो धर्म वो धर्म पालन करना। पति का धर्म, पति पतिव्रता वो होती है जो पति के धर्म का पालन करती है, उस कुटुंब का धर्म पालन करती है। कई जगह हम देखते हैं सनातनियों की जैनियों के घर में, जैनियों की सनातनियों के घर में स्त्रियां जाती है, उसके लिए यही कहा गया उनकी सेवा करो। तो वो गई वहां पर, तो वो एक ही था पुत्र उसका, तो विश्वास जिसानी कोई नहीं, एक ही वही, एक उसकी सास, एक ससुर, एक बूढ़ी माँ जी, इतने प्राणी थे घर में। वो सेवा करने लग गई, उसने देखा उसकी सास है वो अपने सास को तिरस्कार देखती है, ठोकर मार देती है, चाहे तो कह देती है, ऐसे तिरस्कार करते देखा। लड़की ने देखा पिताजी ने तो कहा सेवा कर लो, और मेरी सास तो बूढ़ी माँ जी का तिरस्कार करती है। पर मैं बोलूं कहूं तो कल की छोरी आई मेरे गुरु बन गई। तो लड़की बड़ी सियाणी बुद्धिमती थी, सब काम करती, घर का झाड़ू दे दिया, साफ कर दिया, रसोई बना दी, सबको भोजन कराया, बर्तन धो दिया, कपड़े धो दिए, पानी भर दिया। दिन में जब भगत मिलता तो बूढ़ी माँ जी के पास में जाकर बैठ जाती, उनसे बातें करती। तो सास को बुरी लगे, वहां क्या करती, बोला कहा बोलो वहां क्या करती हो, कि भगत मिला बैठे, क्यों वहां क्यों बैठी, कि मेरे पिताजी ने कहा है कि छोरों के लड़कियों के पास नहीं बैठा, जवान लड़कियों के पास भी नहीं बैठना, बूढ़ी माजियों के पास बैठना और उनसे शिक्षा लेना। तो अपने तो सबसे बूढ़ी माजी यही है, इस बात से बैठे। तो वह क्या करती, क्या पूछती हो, मैं पूछती हूँ कि मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती है, क्योंकि पांच दिन मेरे भी काम पड़े सेवा करनी है। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा अपने धर्म का ठीक पालन करना, मर्यादा अपने घर की ठीक रखना, जहां जाओ वहां, इस वास्ते पूछती हूँ। कुछ उसे उन्होंने बूढ़ी माजी ने क्या कहा, वो कहे कि ये ठोकर की न मारे गाली न दे तो मैं तो सेवा मान लू, ऐसी बात थोड़ी होती है। तो बड़ों को तो आपने पूछा तो मैंने तो भाव भाव बेची है, कोई मुनाफा नहीं कमाया है, जैसी सुनी वैसी बात कही कि नहीं सेवा करनी चाहिए, ठीक है। सास के ये जच गई कि ये छोरी सीख जाएगी फिर मेरी दशा ऐसी करेगी, वो सुधरने लग गई। अब उसे देखा तो वो खाट था, उसके नीचे मोजियां लटक रही थी झोली वजह। तो वो देखती है, क्या देखती हो, कि बड़े बूढ़ों को खाट कैसा दिया जाए, कि तुम पागल है, दिया थोड़ी जाता है, ऐसा तो पुराना ऊर्जा से हो जाता है, तो फिर वो ही रखना, तो कौन पैसा आग हुक्म दे दो मैं बिछा दू, तो बदल दे नवार का बढ़िया ढोलिया लाकर बिछा दिया। अब माँ जी के कपड़े हैं, वो उठाए कपड़े और धोती धो साफ के देख रही हूँ, तो ये सांगरी हो रही हूँ कपड़े कि क्या देखती हो, कि बूढ़ों को कपड़े कैसे दिए जाए, तू पागल है क्या, ऐसे दिए जाते हैं क्या कपड़े, ये तो फटने से हो जाते हैं, तो वही रखना, कि बदले कौन, बदल तो मैं दू, आज्ञा आप दे दो, आप हुक्म दे दो, कपड़े बदल दिए, बिछौना अच्छा हो गया, माजी आराम से रहने लगी। एक बात थी, वो ठीकरी में भोजन देती थी, तो वो ठीकरी इकट्ठी कर रहा किसी कोने में, कहते ठीकरी किसी क्यों करी है, कि आज आप इसमें देते हो, मेरे पिताजी ने कहा कि घर की रीत नहीं कमानी, अपने ससुराल की रीत हो चल रही, तो आपके लिए रखी है, काम पड़ेगा तो आप हो दूंगी, तो ठीक नहीं जाएगी। सब पिताजी ने कहा है तो बेटा तेरे घर की रीत रखना, वहां तेरा घर वो है, तो ये कोई रीत थोड़ी है, तो थाली मान जा कौन, मान तो मैं दूंगी, उठा फैंके में हमें क्या करना है, थाली तो मैं मान दूंगी। अब सब भोजन कर रहे तब उसको भोजन दे माँ जी को, तो दाल भी नीचे गिर जाए तो कांकर रह जाए, खिचड़ी वो तो जली हुई रह जाए, फुलका नीचे का रह जाए, वो पीछे दे तो वो यूं देखती है। बिंदी क्या देखती है वो, कि माइतों को कैसा भोजन दिया जाए, निगाह करती हूँ तो कैसा नहीं, अच्छा भोजन देना, ठीक है, कौन पुरुष है कौन, कि आप हुक्म दे दो, पुरुष तो होगी, आप आज्ञा दे दो, तो पैर जोड़ दे दिया कर दे। अब खिचड़ी ताजी ताजी माँ जी को दे दे, माँ जी तो राजी हो गई, खुश हो गई, आशीर्वाद देने लगी कि बड़े अच्छे घराने की लड़की आई भाई। तात्पर्य है क्रियात्मक उपदेश होता है कि क्रियात्मक करके बताना, करके करना, तो बड़ा अच्छा असर पड़ता है। सास को कहते ही कि तुम ऐसे करो ऐसे करो तो लड़ाई हो जाती है आपस में, और वो काम करने दो, सास भी सुधर गई, घर सुधर गया, खूब अच्छी तरह से प्रेम से घर रहा। तो घरों में लड़कियां जाती है वो सुधार देती है, घर में घर लड़कियां होती है तो वो घर में सुधार देती है। मैंने देखा है ऐसा घर, सुना है देवरानी जेठानी की बड़ी खटपट अलग हो गई। एक लड़के आई अपने ससुराल से तो माँ के भी गई, अपने बड़ी माँ के भी गई, ताई के भी, तो वहां जाकर तो ताई की अगाड़ी कहा कि मेरी माँ आपकी ऐसी प्रशंसा करती थी, माँ के कहते ताई जी तो ऐसा आपकी प्रशंसा करती, मतलब प्रेम करा दिया आपने, खटपट मचा दी, नहीं तो लड़ा दे छोरियो आपस में, सास बहु को लड़ा दे, जिसने को लड़ा दे आपस में ऐसा, तो कड़ा पैदा कर देना ये निकम्मा काम, शुद्ध काम है जिसमें आराम से दे। हमने घर ऐसा देखा है जिसमें कई हिस्से आई है बाहर से सत्संग दृष्टि से, तो इसमें मालूम नहीं पड़ता घर की मालिकिन कौन है, पता ही नहीं, सब बनाओ खाओ रहो करो, अब अपरिचित आदमी पता ही नहीं लग गए, बेबी स्त्री ही है। ऐसे आपस में प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो, आदर करो, आराम दो, और धंधा काम अपने लो, ये उल्ट पुलट कर दो, काम धंधे के लिए तू कर नहीं, मैं करूं ये चीज वस्तु आप लो, तो देने से चीज बढ़ती है और लेने से घट जाती है, ये बात है। तो इस तरह से अपना सुधार करो, आज हमें जल्दी जाना है, वहां काम है, इस वास्ते हम क्या करें, समय रहेगा थोड़ा। यदि चार पांच मिनट है तो इस तरह से घर में प्रेम का बरसाव करो, आदर का बरसाव करो, स्वार्थ का अभिमान का त्याग करो और उसका आदर करो, हित करो, ये चार बात, अपने स्वार्थ बुद्धि का और अभिमान का त्याग करो और उनका हित हो, परिश्रम हो, परिश्रम अपने करो, चीज वस्तु उनको दो, तो देने से चीज बढ़ती है, लेने से घट जाती है। प्रसाद कोई देने लगे, लेने लगे तो दो चार पांच जगह खत्म हो जाएगा, और लेने वाला ना लाकर तो सबको दिया जाएगा, एक बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। इस तरह से सब दो, लेने में काम धंधा ले हो तो काम धंधा अधिक होता आदमियों को, इस वजह से नौकर रखते हैं, पर नौकर रहते हैं आपके काम करने वाले, वे घर में नौकर रखते हैं क्या, कोई नौकर कहां से रखते, तो वे भी गृहस्थ आप गृहस्थ, वे तो गृहस्थ ऐसे जो अपने घर का काम करे, आपके घर का भी काम कर जाए, और आप अपने घर का ही काम नहीं कर सकते और बड़े कह जाते हो, बड़ा कौन हुआ दो घर का काम करे, आपसे एक घर का काम नहीं होता, परिश्रम करो, खूब उत्साह है, सबकी सेवा करो, भगवान मिलते महाराज परस्परम भाव यंता श्रेय परम आवश्यकता देवान भावेता ने रहती है देव, एक एक की सेवा करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ, तो ये कर्मयोग की बात है, ऐसी भक्ति योग की है, ऐसे ज्ञान योग की है, ये सब के सब योग कल्याण करने वाले हैं। इस वास्ते सज्जनों बड़े उत्साह से उम्मीद भरी से काम करो, मौका मिल गया है, बड़ा सुंदर अवसर मिल गया है, कलयुग का मौका और सेवा लेने का मौका, बात लेने वाले ज्यादा है, करने वाले कम है, करने जो चीज कम हो जाती है उसका मूल्य बढ़ जाता है, ज्यादा होती है उसको घट जाता है। तो पहले जमाने में सेवा करने वाले ज्यादा थे तो सेवा का इतना महत्व नहीं था, आज सेवा करने वाले कम हो गए हैं तो सेवा करने वाले का मूल्य बढ़ गया है। भगवान के दरबार में वहां भी भगवान भी चाहते कि हमारे कोई ऐसा काम करने वाले आवे, लड़कियां जो हमारे भक्तों की सेवा करे, और सेवा नहीं करे उनको भगवान कहता है। हमने एक संत से सुना कि नरकों में ठोर नहीं मिलेगी, कहते नरकों में ठोर मिले स्वर्ग में जाएगी क्या हो जाए, कहते ठोर नहीं मिलेगी। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कबूतरों को टोकरी में भर करके ऊपर ऊपर रख करके जाप मांग देते हैं ठोर मिली है रहने के लिए, नरकों में इस तरह से रहना पड़ेगा, मानो बड़ी बड़ी यातना भोगनी पड़ेगी। और सेवा करो दूसरों की तो आनंद हो जाए मौज हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी की बात है, अपने सेवा करो, पूरी सेवा लेने तो घने रहती होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, बहुत ठीक है कृपा हो गई। ऐसे आपस में परस्पर भाव यंत्र एक एक की पूजा करते हुए, एक एक की वृद्धि करते हुए, एक एक का सम्मान करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, और मन में भी आनंद होगा और घर में भी प्रेम होगा। ये बात है। किसने पूछा है कि भाई स्त्रियां शरणों की रजी ले सकती है क्या? अरे शरणों की रजी तो सब ले सकते हैं, सब जिनके भाव हो तो संतों के लिए हो, गौ माता के चरणों के लिए ले हो, संतों के लिए हो, ब्राह्मणों की रजी को ले हो, सिर पर चढ़ाओ, पूजनीय माता पिता जिनकी रजी ले हो, लक्ष्मण जी सीता जी जैसे तो भर जी गए तो सीता माता के चरणों की रजी लेकर अपने सिर पर रखा, सब अधिकारी है। पर कोई ना कहे तो उसको कहना मानो, उनकी रज्जी में इतनी ताकत नहीं है जितनी हरि की दरबार में है, मेरे पीछे पड़ जाते हैं, नहीं तो वहां मैं चलो वहीं करे अपना निषेध करते हैं, आप चला गए मेरे को तंग न करो। कोई ना कहे तो उनकी बात मान लो, नहीं तो बात का तिरस्कार करने में सम्मान नहीं है मेरा। नारायण 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 नारायण।